como estoy viendo el tiempo. सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
बोले परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि कंद की।
हम लोग अनुप्रेक्षा के माध्यम से अपनी विचार की शक्ति बढ़ा रहे हैं। अनुप्रेक्षा ज्ञान के साथ साथ अनुभव करने की प्रक्रिया है। हमने पिछले दिनों जो भी जाना है उसे अपने जीवन में अनुभव करने का पुरुषार्थ भी हमें करना चाहिए। ये अनुप्रेक्षा हमें सिखाती है। अनुप्रेक्षा एक बहुत अच्छी सलाहकार है। अनुप्रेक्षा हमें वास्तविकता का बोध करा के हमारे भ्रम को तोड़ती है। अनुप्रेक्षा हमें सुख और दुख दोनों में समान रहने की प्रेरणा देती है। अनुपेक्षा हमारी आत्मशक्ति को बढ़ा देती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। वे काम जो कि हम सोचते हैं कि कभी नहीं कर पाएंगे, वे काम भी हम अनुप्रेक्षा की शक्ति से कर सकते हैं। जैसे सुकमाल मुनि महाराज और अपने जीवन का कल्याण इसी विचार की सामर्थ्य की वजह से कर पाए थे, ये हमने पिछले दिनों समझा है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसके बारे में एक ही चीज जानने योग्य है कि वो सब क्षणभंगुर है। पर मजा ये है कि जो देखने वाला है वो क्षणभंगुर नहीं है। जो दिखता है, जो भी दिखता है, यहां जितना भी हम देख पाते हैं वो सब क्षणभंगुर है। लेकिन जो दिखाई नहीं देता या जो स्वयं देख रहा है वो दोनों ही क्षणभंगुर नहीं है, वो शाश्वत है। मजा ये है कि देखने वाला खुद को नहीं देखता, जो दिखाई पड़ रहा है उसी को शाश्वत मान के और उसी में जीता है। अनुप्रेक्षा हमारे इस भ्रम को तोड़ती है, हमें बता देती है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो क्षणभंगुर है, जो देख रहे हो तुम स्वयं उसको देखो। इस सबको देखने से नहीं काम चलेगा, वो जो स्वयं जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जो खोज में निकला है उसे किसी ने आज तक नहीं खोजा। ऐसा एक बहुत पुराना उदाहरण आता है कि ईश्वर भी एक बार आदमी से तंग आ गया था। हाँ, आदमी से तो सब तंग आ जाते हैं। आदमी इस तरह से इतना चालाक है, इतना बुद्धिमान है कि भगवान भी मुश्किल में आ गए तो भगवान ने सलाह ली, अपने जो उनके सलाहकार थे, जो उनके वकील वगैरह थे, उनसे सलाह ली। ऐसी घटना है, वो सच्ची सच्ची थोड़ी है, वो समझाने के लिए है। अब ना वहां पर कोई भगवान के सलाहकार है ना कोई वहां वकील लगा रखे हैं भगवान ने, उनको तो अपने आत्म ध्यान में लीन है, उनको फुर्सत थोड़ी है। पर घटना है ऐसी हमें समझाने के लिए, तो भगवान ने भी जब सलाह ली तो बहुत दिन सोचने के बाद उनके वकील ने उनको धीरे से कान में सलाह दी कि आप अगर मनुष्य से बचना चाहो तो ऐसा ऐसा करो। भगवान ने वैसा किया तो बड़े खुश, अब कोई भी उनको नहीं ढूंढ पाता, कोई भी उनके पास तक नहीं आ पाता, तो वकील को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने बड़ी अच्छी ट्रिक बताई जिससे कि अब मैं लोगों की अप्रोच के बाहर हो गया हूं, अब लोग नहीं तो मुझे हर समय पा जाते थे और कोई ना कोई अपनी मांग कि ये मांग पूरी कर दो वो मांग पूरी कर दो, ये समस्या आ गई है अब मुझे ढूंढ ही नहीं पाते। मालूम भगवान को वकील ने कौन सी सलाह दी थी कि आदमी तुम्हें और सब जगह ढूंढ लेगा, तुम उसके भीतर बैठ जाओ वो कभी नहीं ढूंढेगा। हाँ, वो अपने भीतर कभी नहीं झांक के देखता, वो सब दुनिया में देख करके आ जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रतीक है इस बात का कि जो अपने जितने निकट है, हम स्वयं अपने बारे में जितने गाफिल हैं, स्वयं को नहीं देख पाते हैं, देखने वाले को नहीं दिखना, देखना और जो दिखाई दे रहा है उसी में रचे पचे रहना, यही तो संसार है। अनुप्रेक्षा हमें ये सिखाती है कि जो इन दो आंखों से हम देखते हैं वो सब क्षणभंगुर है, लेकिन इन दो आंखों के पीछे जो देखने वाला बैठा है उसको देखो, वो शाश्वत है। इस तरह से अनित अनुप्रेक्षा ने हमें आत्मदृष्टा बनने की सलाह दी, हम अपनी ही आत्मा को देखें, इस जगत को देखें भी तो उसे क्षणभंगुर की तरह देखें। और हम यहाँ सब दूर शरण खोजते हैं, पर कहीं भी हम शरण लेने जाते हैं तो कोई हमको शरण दे भी देता है पर वो स्वयं ही अशरण है, वो हमको कितनी शरण दे सकता है। बस तो इतना ही, हमारा मकान है, हमारे परिवारजन है, हमारा समाज है, हमारा देश है, सब हमारी मदद के लिए खड़े हुए हैं, सब हमें कभी कभी हमारी रक्षा करते हैं, कभी बचा लेते हैं, लेकिन अंतिम रूप से तो कोई नहीं बचा सकता हमें, मरण से तो कोई नहीं बचा सकता, कोई अपनी सांसें नहीं दे सकता। इसलिए हम दूसरे से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें और अपनी शरण स्वयं खोज लेवें, हम स्वाधीन बन जावें। यही तो हमको सिखाया अशरण अनुपेक्षा ने, हम धर्म की शरण खोज ले। हम संसार में शरण खोजते हैं वो बिल्कुल सांसारिक शरण है, वास्तविक शरण तो हमारी धर्म है। और फिर इस संसार में जहाँ जाओ वहाँ पर किसी न किसी रूप में दुखी मिलता है, यहाँ जो सुख मालूम पड़ता है वो भी अंततः दुख में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो संसार को देखने की हमारी अपनी दृष्टि हम निर्मित कर ले कि संसार को कैसे देखना है, संसार को सुख रूप देखना है या दुख रूप देखना है, या कि जैसा संसार है वैसा देखना है। नहीं तो हम अगर गरीब हैं तो संसार को दुख रूप देखते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, और अगर हमारे पास धन संपदा है तो हम उसी में इतने रच पच जाते हैं कि और की आकांक्षा पैदा कर लेते हैं, तब भी हम दुख ही पाते हैं। यहाँ इस संसार में हम जो है अपने ही मोह, अपने ही अज्ञान के कारण दुख पाते रहते हैं। हम अपने उस अज्ञान से ऊपर उठें और अगर वास्तविकता का बोध हमें हो जाए तो इस संसार के बीच रह करके भी हम सुखी रह सकते हैं, वास्तविक सुख को हम पा सकते हैं। संसार के सारे काम करते हुए भी देखो मजा, कुछ भी नहीं छूटा, लेकिन भीतर से जो संसार के प्रति आसक्ति थी वो अगर जितनी जितनी घट गई तो उतने हम संसार से मुक्त हो गए। और संसार के बीच रहकर, जिसको अपन कहते हैं ना कि देह में रहकर के भी विदेह हो जाना, देह से पार हो जाना, माने देह की आसक्ति से पार हो जाना, तो इस तरह हमने संसार अनुपेक्षा से ये बात हमने सीख ली है। और आज हमको देखना है कि कहां कहां हम ऐक मान करके जी रहे हैं, कहां कहां हमने अपने आप को आरोपित कर रखा है, किन किन चीजों में अपनापन हमने मान रखा है, शरीर शरीर ही मैं हूं ऐसा कोई मानता नहीं है, पर फीलिंग तो ऐसी ही है कि शरीर ही मैं हूं, देख लो, अच्छा शरीर को चोट पहुंचती है तो कैसा लगता है, जैसे कि मुझे चोट पहुंच गई। शरीर बीमार होता है, किसी कोई पूछे कि कैसा है स्वास्थ्य, तो शरीर का स्वास्थ्य ऐसा है, मेरा ऐसा है, ऐसा कोई नहीं कहता, मेरा स्वास्थ्य ऐसा है, अभी ठीक नहीं चल रहा मेरा स्वास्थ्य। अच्छा, तो शरीर और आत्मा में कोई अंतर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता। इतना एक मेक हो गए हैं, इतना ऐक हो गया है हमारा शरीर से ही नहीं, हमारी अपनी चीजों से भी, हमारे अपने बाहर दिखाई देने वाली वस्तुओं से भी हम इतने एक मेक हो गए। अलग अलग अंतर लगते नहीं, कहने में जरूर है कि नहीं जो हमारा शरीर है मतलब हम अलग हैं और शरीर अलग है, जो हमारा पेन आए पेन अलग है हम अलग है, जो जो कह वो तो बहुत आसान है। इतने अकेले से सम्यक दर्शन हो जाते तो होने का हो तो आज तक सबको कहते कि देह जीव खो एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, सो हम फौरन जी लाइन पढ़ते हो सोचते कि हम कौन देह और जीव खो एक मानत, हम तो अलग ही अलग मानत। अलग अलग मानत तो हो लेकिन अपने व्यवहार में तो देखो कि अलग अलग अनुभव करते क्या। अनुभव तो ऐक का ही होता है, ऐसा मालूम पड़ता जैसे यही हो। पुराने जमाने में वैसे कहानी चलती थी बच्चों की, उसमें क्या कहती थी कि एक राजा था और फिर वो राजा एक जगह युद्ध में गया, वो वहां पर जो है जीतने लगा। वहां के दूसरे वाले राजा ने एक तांत्रिक मांत्रिक से पूछा कि राजा के मारने का क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा कि इस राजा की जान उस फलाने वाले तोते में है, उस तोते को पकड़ के ले आओ। तो फिर तोते को पकड़ने कोई राजकुमार जाता था, बच्चों की कहानी में नहीं देखा गया था। फिर वो राजकुमार उस तोते को, तो जैसे ही उस तोते की गर्दन दबाई तो राजा मरने लगा, तोते की टांग तोड़ी तो राजा की टूट गई। ये क्या है, ये बच्चों की कहानी नहीं है, हमारी अपनी कहानी है। हमारी तिजोरी में कोई हाथ लगाए तो ऐसा लगता है जैसे छाती में हाथ लगा दिया हो। हमारे रुपया, अगर छोटा सा बच्चा जो है रुपये को ऐसा थोड़ा ही ऐसा फाड़े तो ऐसा लगता है जैसे भीतर कछु फट रहा हो। ये क्या है, हमारी जान वही में तो धरी साहब, वो तो बच्चों की कहानी है। लेकिन कितना नहीं ध्यान नहीं जाता अपना इस तरफ, अपन कह देते हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं बस। ऐसा सोच करके कैसा लगने लगता कि अरे सच्ची तो है, ऐसा ऐसी तो अपन ने कितना एक मेक हो गए हैं इन सब चीजों में, जैसे हमारी इन सब चीजों में जान धरी हो, बिल्कुल ऐसा हो गया है। हम में और इनमें कोई अंतर नहीं रहा, हमारे शरीर ही क्या, हमारे बाहर बैठी हुई चीजें, उन सब चीजों के साथ इतना एक मेक हो गए। और एक मेक हो जाते हैं तो अपना जो स्वभाव है, अपना जो एकत्व है, वो भूल जाते हैं। श्रुत परिचिदानुभूता सवस्य विकाम भोग बंद कहा एयत्त सुवलंभो नविन सुलभो विहत्तस्। एकत्व और विभक्त यह सुलभ नहीं है, संसार में बाकी सब सुलभ। श्रुत परिचित और अनुभूत है, कौन सी चीज सुनी हुई है, कौन सी जानी हुई है, कौन सी अनुभव में आई है, अनादिकाल से श्रुत परिचिदानुभूता सवस्य सब जीवों के लिए काम भोग बंध कथा। इस संसार में काम वासना भोग विलास और कर्म बंधन की कथा सब जीवों की जानी मानी सुनी अनुभव में आई है। एकमात्र अगर दुर्लभ है इस जीव के लिए तो एकत्व विभक्त की कथा। तम यत्त विहत्तम दाए हम अपनो सभी वेण जदिदाए जपमानम चुके जलम नघे तब्बम। समय सार जी इतना बड़ा ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी शुरू करने से पहले ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उस एकत्व की बात कर रहे हैं। इस संसार के बीच भी हम अपने उस आत्मा को जो कि सबसे भिन्न है, विभक्त का मतलब सबसे पृथक और एकत्व का मतलब एकाकी, ऐसे अपने उस आत्मा को न हमने आज तक जाना है, न उसका परिचय प्राप्त किया है। अनुभव तो है ही नहीं, जिस चीज का परिचय नहीं, जिस चीज की जानकारी नहीं, उसका क्या अनुभव अपन ने किया होगा। आज अपन आत्मानुभूति की बात करते हैं, स्वानुभूति की बात करते हैं। अरे भैया, अभी परिचय और जानना भी नहीं हुआ, रूबरू होना तो बहुत कठिन है। अभी तो इंफॉर्मेशन तक नहीं है उसके बारे में, कहीं कोई खबर तक नहीं है उस आत्मस्वरूप की, उस एकत्व की। अभी तो हमने बाकी चीजों में एकत्व मान लिया है। वो भ्रम जब तक नहीं टूटेगा, वहां से हम नहीं हटेंगे, तब तक अपने उस एकत्व को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, एकत्व और आकिंचन में क्या अंतर है। अपन ने पिछले दिनों आकिंचन धर्म समझा था, उसमें भी यही है कि हम सब पर पदार्थों से भिन्न हैं, यही तो समझा था। कल अपन अन्यत्व अनुपेक्षा, कल तो नहीं परसों समझेंगे जब भी बैठे, अन्यत्व ज्यादा अंतर नहीं है पर बड़ा बारीक अंतर है। आकिंचन में हम सब बाह्य वस्तुओं को छोड़ करके अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, एक इनर फुलफिलमेंट, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हम संतुष्ट हैं, हमें किसी भी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम अपने में, जैसे कोई व्यक्ति अपने में पूरा संतुष्ट हो, उसको कोई कुछ दे तो वो कहता नहीं भैया अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को आवश्यकता ही नहीं। ऐसी स्थिति बनती है तब वो कहलाता आकिंचन धर्म, और जिसमें मैं एकाकी हूं, अपने सुख दुख का एक अकेला ही भोगने वाला, ऐसा अनुभव होता है तब वो कहलाती है एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व अनुप्रेक्षा में चिंतन की निरंतरता है और आकिंचन में वैसे हो जाने की फीलिंग है, बस इतना ही अंतर है। कभी अगर विचार करें आप तो इसको ऐसे विचार करिएगा कि हमने पिछले दिनों यही तो समझा था। आकिंचन में सिर्फ इतना ही विचार हम कर रहे हैं, या कि विचार नहीं, इतना ही अनुभव करते हैं कि मैं अपने आप में पूरा हूं, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मुझे अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन एकत्व में सब चीजों के बीच अभी हम हैं, आप भी एकत्व का विचार कर सकते हैं, जिसने अभी कुछ नहीं छोड़ा, जब अभी जो ये अकिंचन हुआ ही नहीं है वो भी एकत्व का विचार करने में क्या हर जाए। विचार कैसे करना, मैं शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही देते, सुतदारा होए नसीरी, सब सारथ के हैं। सबका हमसे काम सटता है, हमारा भी सबसे काम सटता है। ऐसा नहीं समझना कि दूसरे ही हमसे अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, हमारा भी स्वार्थ है, सबका लगा हुआ है। यहाँ जितने भी संबंध हैं उनमें एक दूसरे की उपयोगिता पर टिके हुए हैं, एक दूसरे से अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। हाँ, और कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बिना चल ही कैसे सकता। आपका काम हमसे नहीं बने, आपका हमारे प्रवचन से कोई लाभ ना हो तो काहे को आप सुने, और हमें जिस दिन ये लगने लगे कि इनको हमारे उससे कोई लाभ नहीं तो हम काहे को बोले, बताइए। ये भी तो एक रिश्ता है, लेकिन इसमें और हमारे सांसारिक रिश्ते में थोड़ा अंतर है। ऐसा नहीं करना कि सबको एक ही उसमें तौल लेना, थोड़ा अंतर रहता है। उसमें हम अपने विषय भोगों की आकांक्षा से अपना स्वार्थ साधते हैं, और इसने अपने कल्याण की अपेक्षा से, इतना ही फर्क। पर दोनों में स्वार्थ के दो अर्थ हो गए, एक तो स्व मतलब आत्मा, अपने आत्मा का प्रयोजन साधना, ये भी स्वार्थ है, वो अपन यहां साध रहे हैं स्वार्थ अपना। और एक वो है, स्व का मतलब धन पैसा, एक वो है जिसमें हम अपने धन पैसे यश वैभव इस सब के साधने में दूसरे को माध्यम बना लेते हैं, वो एक स्वार्थ है। वैसे आदमी को भला नहीं माना जाता, बड़े मीनली हैं, बड़े सेल्फिश हैं, ऐसा कह देते अपन। इनको अपनी अपना साधना लगा हुआ है, इनको अपनी घर गृहस्थी हमसे यही करवाते रहते हैं, वो खोटा स्वार्थ है और ये अच्छा स्वार्थ है, बस इतना ही। पर लगे तो सब हैं, सारे संबंध जितने यहां पर हैं, अपन विचार कर रहे हैं तो विचार करें कि सारे संबंध जितने हमने बना रखे हैं, भाई का संबंध है, बहन का संबंध है, बेटी का संबंध है, पिता का माता का संबंध है, सारे संबंध देखें अगर तो हम अपने संसार की एक दूसरे से पूर्ति ही करते हैं। गुरुओं से, धर्म से जो हमारा और भगवान से हमारा संबंध है, वो भी हमारे स्वार्थ पे टिका है, लेकिन वह स्वार्थ स्वार्थ ना कहला के परमार्थ कहलाता है, बस इतना ही फर्क है। उससे हम आत्मा का हित साधते हैं, इसलिए वो संबंध जुदा है। उस संबंध को भी हमें समझना चाहिए, और जो सांसारिक संबंध है उनको भी समझना चाहिए, किसमें कितना ऐक है ये समझना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि हम एकत्व को कैसे अनुभव करें। बस एकत्व का विचार करना मतलब अपने संबंधों का सापेक्ष रूप से विचार करना। 18 नातों की कथा लिखी है, बहुत लंबी चौड़ी। हाँ, एक उनका जिनकी ये गोपालदास परिया की वो नहीं है जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, उन्हीं का एक 18 नातों की कथा वाला एक उपन्यास लिखा हुआ 18 नाते की। उसमें एक ही जीव, हाँ ऐसा नहीं कि अलग अलग जीव हैं 18 और उनसे नाते, एक ही जीव अपना ही पिता बन जाता है, अपना ही माँ बन जाता है, अपना ही बेटा बन जाता है। आप आश्चर्य करें ऐसे संबंध हमारे अपने एक जीवन में नहीं बन पाते पर कई जिंदगियों में ऐसे संबंध बन चुके। इसमें क्या, आज हम जिनके बेटे हैं हो सकता है कभी इस संसार के चक्र में वे हमारे बेटे रहे हों। हाँ इसमें क्या, आप बताइए, जिसको हम आज अपनी माँ मानते हैं वो जिनके हम बेटे हैं हो सकता है कि वो हमारी माँ कभी हमारी बेटी रही हो। अब जिसको आज हम अपना मित्र मानते हैं वही हो सकता कभी हमारा शत्रु रहा हो, और जिसको आज हम शत्रु मानते हैं वही हमारा मित्र रहा हो। ये सारे रिश्ते, हम विचार करें इन रिश्तों पर, क्या ये रिश्ते वास्तविक हैं क्या नहीं, ये रिश्ते वास्तविक नहीं। मेरा अपने से रिश्ता वास्तविक है, मेरा और लोगों से रिश्ता वास्तविक नहीं है। चलिए ये हो गया एकत्व के बारे में विचार, कोई ज्यादा कठिन थोड़ी है। इस तरह विचार करने से क्या होगा, इस तरह विचार करने से संबंधों के बीच मधुरता बनी रहेगी। जो एकत्व अनुप्रेक्षा का विचार करता है वो किसी से खोटे संबंध बनाए गए नहीं, उसे मालूम है कि जब संबंध सब मिथ्या हैं तो बनाओ तो भले ही बनाओ। अरे जब अच्छे और बुरे में से चुनने को मिले तो कौन ऐसा गैर बुद्धिमान होगा जो बुरा चुनेगा, अच्छा ही ना चुनेगा। ये बात अलग है कि मजबूरी में उसे बुरा करना पड़े, लेकिन कोई चुनता तो नहीं है बुरा, अच्छा ही चुनने की कोशिश करेगा। तो एकत्व अनुप्रेक्षा अगर हम बातें हैं तो उससे क्या लाभ हमको मिलता, हमारे संबंधों की तासीर मालूम पड़ जाती और फिर हम संबंधों को ठीक से जीते हैं। अभी हमारे पास पिछले साल विदेश से एक लड़का विदेश गया गढ़ाकोटा का, उसका पत्र आया, महाराज यहां आकर के मुझे संबंधों की कीमत मालूम पड़ी, यहां हम अगर कोई ये कहता मालूम पड़ जाता है कि मैं भारत का हूं तो हमें वो अपना सगा भाई जैसा मालूम पड़ने लगता है। हो सकता है कि हमने अपने घर में अपने सगे भाई से भी वैसा व्यवहार ना किया हो जैसा हम यहां पर कोई भारत का है ये कहता है तो हम उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं, और यहां अगर कोई हमसे कह दे कि हम मध्य प्रदेश के हैं तब तो सगा भाई क्या हमारा सब कुछ हो गया, और अगर मध्य प्रदेश में से भी वो कह दे कि हम सागर जिले के हैं तब तो हम उससे क्या कहें, शायद जिंदगी भर हम उसके साथ रहने तैयार हैं। और हो सकता है कि घर के लोग जो हमारे सगे संबंधी उनसे हमने वैसा व्यवहार ना, यहां आकर के अब हमें लगता है कि घर वापस जाएंगे तो माँ को सचमुच माँ मान के जिएंगे, अभी तो हम उससे माँ के जैसा व्यवहार ही नहीं कर पाते थे, अब समझ में आया है कि संबंध इतने कीमती हैं, वहां पर कोई संबंध नहीं है तब समझ में आया, यहां तो हमारे कितने जल्दी कितने मीठे संबंध फोकट में बन जाते हैं, ये हमारी माँ है क्योंकि हम उनसे पैदा हुए हैं, ले बिना उसके माँ बन गई क्योंकि पैदा हुए हम उससे, इसलिए हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, लेकिन हम क्या सही में माँ और पिता के साथ वैसा ही व्यवहार कर पाते हैं जैसा हमें करना चाहिए, जैसा भाई के साथ करना चाहिए, जैसा बहन के साथ, जैसा बेटी के साथ, वैसा कर पाते हैं, मान लिया हमने कि हैं ये। अगर एकत्व अनुप्रेक्षा हमारे जीवन में आ जाए, मैं आपको बहुत सांसारिक सी बात कह रहा हूं, जो संबंधों की तासीर समझ जाए, जो समझ जाए कि ये संबंध बहुत थोड़े दिन के हैं, संबंध है तो इस संबंध को ठीक से जी लो ताकि इस संबंध से पार हो जाए। जो संबंधों को जितना अच्छे से जीता है वो संबंध के पार हो जाता है, जो संबंध को राग पूर्वक जीता है वो भी संबंध में फंसा रह जाता, जो संबंध को द्वेष पूर्वक जीता है वो भी संबंध में फंसा रहता, जो राग और द्वेष दोनों से परे उस संबंध को जीता है वो वास्तव में जीता है। क्या कहते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। क्या मतलब है, प्रेम फैले और मोह दूर रहा करे, मतलब प्रेम अलग चीज है और मोह अलग है, वास्तव में जो बांधे वो मोह और जो मुक्त करे वो प्रेम, परिभाषा ही इतनी है। बताइए जिससे हमें प्रेम होता है उससे मुक्त हो जाते कि नहीं, उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाते थे कि नहीं कि बताओ अब इनकी तरफ से कछु उपद्रव नहीं हो सका, ये तो हमारे अपने हैं, होता है कि नहीं? और ऐसा प्राणी मात्र से प्रेम हो जाए तो कितनी निश्चिंतता, कितनी निर्भयता, कितना सहज जीवन। लेकिन ये बहुत कठिन है, कहने सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, कहने सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको जीना पड़ेगा। जीते हैं तीर्थंकर, इसलिए बनते हैं तीर्थंकर। अपने पूर्व जीवन में आज ही सुबह लिख रहा था मैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में कि क्या हुआ होगा, कैसे उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना सबको अपना माना होगा, तब फिर वे सबके हो गए, सब उन्हें अपना मानने लगे, सब उनके चरणों में सरेंडर हो गए। ये है एकत्व भावना। वास्तव में जब हम संबंधों को ठीक ठीक पहचानने लगते हैं तो हम संबंधों के से पार हो जाते हैं और वास्तविक संबंध हमारा अपने आत्मा से जुड़ना शुरू हो जाता। जब तक हम बाहर के चीज़ों से जुड़े हैं और ठीक ठीक नहीं जुड़े हैं तो बताइएगा वे संबंध हमें सुख और दुख दो ही चीज़ें दे सकते हैं, शांति तो नहीं दे सकते। और अगर हम उन संबंधों को राग द्वेष पूर्वक ना जुड़ें और संबंध फिर भी बने रहें तब उन संबंधों से शांति मिलती है। अपने जीवन में झांक के देखना कितने लोगों से ऐसे जुड़े हैं जिनसे जुड़ने में शांति मिलती है और कितने लोगों से ऐसे जुड़े हैं जिनसे जुड़ने में दुख मिलता है, कितने लोग हैं जिनसे जुड़े हैं उनसे सिर्फ संसार का सुख मिलता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम जुड़े होंगे जिनसे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता होगा, जिनसे हमें सच्चे सुख का रास्ता मिलता होगा। बस इतने ही तो बना के रखा हमने, और क्या है बताइएगा इस संसार में, ऐसे ही तो संबंध बना के रखे हमने। अब उसमें से देखना यह है कि द्वेष के संबंध हम खत्म कर दे, राग के संबंधों से थोड़ा ऊपर उठें, जो श्रद्धा के संबंध हैं कभी इस पर अलग से चर्चा करूंगा संबंधों पर, अभी तो एक रफ अपन चूंकि विचार कर रहे हैं इसलिए विचार करें कि क्या ऐसे संबंध और अपने आप से संबंध। ऐसा कहना बहुत आसान है, अपने आत्मा से जुड़ो ये यज्ञ है और जुड़ो अब का करो, भीतर झांको तो भीतर तो सिवाय कचरा के अलावा और कछु नहीं दिखाते, देख लो आप मशीन लगा के देख लो भीतर। हाँ कई लोग हमसे कहते कि आप भीतर झांक भी गए तो भीतर तो और बिल्कुल कचरा यभर हो, भीतर का झांके हम, बात सही है। भीतर झांकने के मायने क्या है, इन संबंधों के पार, इन संबंधों की तासीर, यही तो भीतर झांकना। भीतर झांकना मतलब टू एंटर फॉर मैं कहना चाहिए नेचुरलिटी, ये जानने के लिए कि वास्तविकता क्या है, एंटर करना, प्रवेश करना, आर पार देखना, ट्रांसपेरेंट होकर के देखना, वो है वास्तव में देखना। भीतर देखने के मायने ये है कि अपने संबंधों को गौर से देखें और देखें कि अपने अपने भीतर माने हमारे अपने आत्मा से हम किस तरह जुड़े हुए हैं, लोगों से आत्मा से कितने जुड़े हैं और बाहर कितने जुड़े हुए। एक छोटी सी घटना सुनाऊं और मेरे ख्याल से अपने को बात थोड़ी बहुत तो स्पष्ट हुई होगी, एकदम मेरी जितनी सामर्थ्य है उतनी मैंने आपको स्पष्ट करी। और आप भी इस चीज़ को आगे बढ़ाइएगा और देखिएगा कि किस तरह हम एक अकेले अपने सुख दुख को अनुभव कर सकते हैं और किस तरह अपने संबंधों को मेंटेन कर सकते हैं। बस दोनों चीज़ें करनी है अपने, संबंधों को बढ़िया मधुर बनाना है, उनको मेंटेन करना है, क्योंकि संबंधों में खटपट कब होती है, जब हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है, जब हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। और ऐसे संबंध जिनमें कोई अपेक्षा ना हो, बताइए कितने बढ़िया संबंध होंगे, कोई अपेक्षा नहीं हमको, क्योंकि मालूम पड़ गया है कि अपना सुख दुख जो हो इनको भोगना है तो इनसे हमें सुख मिलने वाला है, ऐसी अपेक्षा क्यों रखें, और इनसे दुख मिलता है ऐसा द्वेष क्यों करें, अरे ये इनसे संबंध, भैया इनसे संबंध बनाने से कोई मतलब नहीं, इनसे तो दुख ही दुख मिला अपन को, यही ना। और इनसे संबंध बनाओ इनसे सुख, अब उनसे कभी सुख नहीं मिलेगा तो उनसे भी संबंध खराब, यही तो है ही, और क्या करते हैं अपन नहीं। और अगर अपन अपेक्षा ही नहीं रखें, मिल गया तो थैंक्स, नहीं मिला तो भी थैंक्स, क्योंकि आप हमें सुख दुख दे ही नहीं सकते, आप सुख दुख में निमित्त बन सकते हैं, बाकी तो सुख दुख मुझे अपना अकेले ही भोगना पड़ेगा, ऐसा मैंने तय कर लिया। शुभ और अशुभ कर्म के फल भोगते समय मैं अकेला हो जाता हूं, इसलिए मैं जब अकेला ही हो जाता हूं तो आप सबको मैं उसका दोषी क्यों ठहराऊं। इस तरह अगर हमारे मन में क्षण भर को विचार आ जाए, किसी से अपन को शिकायत होने लगे तो ये विचार कर देना, अरे नहीं उसकी अपनी क्या विसात, उसकी क्या सामर्थ्य कि वो हमें सुख पहुंचाएगा, हमारे ही दुख का उदय है किसी कर्म का, इसलिए हम दुखी हैं, उसको काय को दोषी दे रहे हैं। और जैसे ही अगर कोई हमें सुख पहुंचाए तो भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि ये तो मेरे सुख में निमित्त बन रहा है, चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, पर सुख तो मैंने अपने ही कर्मों से पाया है। बस इस तरह का विचार हमारे भीतर आ जाए, इतने हम अकेले हो जाएं, संन्यास भी तभी होता है। लिखा है कि कोई भी साधु तब बनता है जबकि इन संबंधों को ठीक ठीक समझ लेता है, जब अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा को समझ लेता है तभी वो इन सबसे पार हो पाता है। और नहीं शुरू में समझ पाता तो साधु बनकर के भी धीरे धीरे समझता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है, प्रयास तो यही है। एक बार एक राजा का मन था कि वो साधु बने। अब उसने एक साधु जी से जाके कहा तो साधु जी ने कहा कि सुनो अकेले होकर के आओ। तो उसने आजू बाजू देखा, कहले हम आपके पास तो अकेले ही आए हैं। कहले अभी नहीं, अकेले नहीं आए, अभी तो तुम्हारे भीतर बहुत भीड़ मची है। हाँ अभी अकेले हो कि कहाँ आए तुम, देख रहे हो कि अकेले आए हो, अकेले हो के आओ। राजा को लगा कि हाँ बात तो सही है, अभी तो मेरी अपना परिवार है, मैं उसको अपना मानता हूँ, मेरा अपना राज्य है, मैं उसे भी अपना मानता हूँ, ये सब सारी भीड़ मेरे साथ तो खड़ी हुई है। ठीक, अब कुछ दिन के बाद, दो चार महीने के बाद फिर आके बैठ गया राजा किरण। अब साधु जी सबको छोड़ आया मैं, लेकिन अभी सबको छोड़ आया हूं ये भाव तो था है कि मैंने सब कुछ छोड़ा, मतलब मेरा पहले कुछ था तब ना छोड़ा, मेरा था ही कहां, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए तो फिर मैंने छोड़ा क्या, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती। तो अच्छा सबको छोड़ के आ गए, हाँ सबको छोड़ दिया, कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं, राज दे दिया लड़के को, गृहस्थी सौंप दी अपने लड़के को, सब सौंप दी, मैं सबसे मुक्त होके, कोई नहीं आया महाराज मेरे साथ, कोई भीड़ नहीं, अच्छा तो आ जाओ आश्रम में रहो। तो क्या काम करना है आश्रम का, अभी साधु तो ना बनाएंगे, अभी तो आश्रम में झाड़ू लगाओ। अरे भैया अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य में कल तक राजा थे और आज इस आश्रम में झाड़ू लगाएं, बहुत मुश्किल है। अगर अकेले होके आए हो तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं, और अपने को अगर अभी राजा मानते हो तो बहुत दिक्कत है, है? राजा पने का सब कुछ तो छोड़ के आए पर राजा पना नहीं छोड़ा। गांधी जी हमेशा नेहरू जी से क्या कहते थे मालूम, कि नेहरू तुम हमारी भाषा तो बोलते हो पर हमारे भावों के अनुसार नहीं बोलते। कैसे कहते बापू, हम तो आपकी भाषा बोलते हैं। नहीं, हमारी भाषा में और तुम्हारी भाषा में अभी अंतर है, तुम चाहते हो कि अंग्रेज चले जाएं और अंग्रेजियत रही आए, और मैं चाहता हूं कि अंग्रेज रहे आए पर अंग्रेजियत चली जाए। इतना ही अंतर रहा गांधी जी और नेहरू जी के विचार में, सो आज नेहरू जी का विचार जिंदा है, गांधी जी का विचार मर गया उनके साथ ही। देख लो, अंग्रेज भले ही रहे आए, अंग्रेजियत चली जाए। सो आज हुआ उल्टा है कि अंग्रेज भले ही चले गए मगर अंग्रेजियत ज्यों की त्यों है, गर्दन दबावे की है ही। अबे कोई नहीं पहने तनक ठंड तो बढ़न दो, फिर देखो अगर हम आपके तो ठंड में रहे तो देखें वो बिल्कुल दबावे गर्दन, टाई लगाते नहीं लगाते, हैट हैट टाई बूट सूट सब में टाकी टंकार है, लाकी लकार नहीं है, लालित तो नहीं है, सब में टंकार ही टंकार, टकराहट ही टकराहट, यही है अंग्रेजियत और कुछ नहीं। बहुत कठिन है एक सब प्रकार से मुक्त होना, वास्तव में आंतरिक मुक्ति सही मुक्ति है, बाह्य से मुक्त हो जाना बहुत बहुत आसान है, कंचन और कामनी से मुक्त होना बहुत आसान है, लेकिन यश और ख्याति की लालसा से मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये मेरे से पूछो, आप नहीं जानते, आप नहीं अनुभव कर पाएंगे, मैं अनुभव करता हूं उस चीज का वर्षों से। बहुत पहुंचा हुआ साधक भी क्यों ना हो, चैलेंज करता हूं, हां ये बहुत आसान, कंचन कामनी छोड़ना बहुत आसान है, एक झटके में छूट जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी उस भाव से मुक्त हो पाना बहुत कठिन, झाड़ू लगाने का काम मिला था उसको, अब क्या करें, साधु बनना है तो झाड़ू लगाना पड़ेगी, लगाओ, लगाई झाड़ू, सारे आश्रम के लोग चकित कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादती कर रहे हैं राजा के साथ, अरे और कुछ काम में लगा दे। लेकिन राजा तो लेना चाहते थे परीक्षा, अभी तो झाड़ू लगवाई, फिर कहा कि सुनो कचरा थोड़ी दूर जाके फेंक के आया करे, वहीं बाहर मत फेंका करे। आश्रम आश्रम में एक दिन आज जाओ कचरा वहां फेंक करके आओ। राजा सिर पर टोकनी रखे कचरा फेंकने जा रहे हैं, और कचरा फेंकने आधे रास्ते पहुंचते हैं, उतने में एक झाड़ू लगाने वाली हां और आकर के टकरा जाती है, सारा कचरा नीचे गिर जाता है। अब राजा साहब मालूम क्या बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं मगर एक वाक्य बोलते हैं, दिखता नहीं, अंधी हो गई, कल तक तो दिखता था तेरे को। बस इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा, लौटाए वापस कचरा डाल करके। साधु जी को तो पहले ही मालूम कर पड़ गया, क्योंकि उनने तो उसे भेजा ही था ऐसा करने के लिए। साल भर की परीक्षा के बाद, अभी अभी समय नहीं हुआ जब, अभी और ठहरो, साल भर और झाड़ू लगाओ। अरे भैया आपने साल भर का कहा था, साल भर बाद भी वहीं के वहीं। एक साल और झाड़ू लगवाई, फिर कहा कि जाओ आज कचरा फेंक के आओ। अब की बार ये कचरा फेंकने गए, मन थोड़ा निर्मल तो हो गया था अब, क्योंकि धीरे धीरे भूलते जा रहे थे कि मैं राजा हूं, ये फीलिंग थी उनको, राजपाट छोड़ देने के बाद भी मैं राजा हूं। तब तो उस दिन उससे कहा था तैश में कि तेरे को कल तक दिखता था, आज फूट गई क्या आंख। अब की बार फिर वो टकराई, टोकनी नीचे गिर गई, पर अब की बार राजा ने सिर्फ घूर करके देखा, कहा कुछ भी नहीं, पर घूर के तो देखा। वापस लौट के आए तो एक साल और झाड़ू लगाओ, अभी एक साल और झाड़ू तब बनाऊंगा साधु। अब बड़ी मुश्किल, सब लोगों ने कहा कि बहुत परीक्षा ले रहे हैं बाबा जी। एक साल और झाड़ू लगाई, होना क्या था, श्री गुरु तो सबका उपकार चाहे हैं, किसी का अपकार थोड़ी करते हैं वे, कठिनाई में डाल करके और उसका अहित थोड़ी करते हैं, वे तो हित ही चाहते हैं। एक साल और झाड़ू लगाने पर मन और निर्मल हो गया। अब की बार जब वो अम्मा टकराई, सारी टोकनी नीचे गिर गई, तो राजा ने मुस्कुराकर उस अम्मा की तरफ देखा, कोई बात नहीं, और अपना कचरा समेट करके और डाल करके आए। जैसे ही वापस लौटे, और कहते हैं कि गुरु ने अपने हाथ से राजा की झाड़ू छुड़ा ली, टोकनी छुड़ा ली, अब तो तुम मेरे समान साधु बनने लायक हो गए, आ जाओ आज दीक्षा दे देता हूं, अब तुम्हारे भीतर ऐसा भाव मिट गया है। भैया ये है एकत्व की साधना, इतनी ऊंची नहीं कर पाए तो कम से कम थोड़ा बहुत इससे अपने जीवन में संदेश तो ले ही सकते हैं कि सचमुच अपन कितनी भीड़ से घिरे हैं, अपन कितना दूसरी दूसरी चीजों से अभी ऐक मान करके जुड़े हैं, वास्तव में अपने आप को हम पहचान नहीं पाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को पहचाने, अपने सुख दुख को अकेले जब हम भोगते हैं तो उसे हम अकेले भोग रहे हैं ऐसा मान करके शांति से भोगें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज,
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। अथवा शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में बहुबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की गलियां दिन रात लुटाया करते वो शमशम की अविनश्वर मणियां शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम नित्यातम नाश वेको के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको बानु शिव कानी गें अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरे आनी है जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे दिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणाग गे सो पावे सुख चैन धवल मंगल कान रवा कुजे जिन ग्रहे मुनि राज
निर्वाणी माता की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की पुनीत की।